अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। पति पत्नी के प्यारे से मीठे से उस रिश्ते को हम तलाश रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा आ गया है कि आज वो मिठास कड़वाहट में बदलती जा रही है, इतनी दरारें क्यों पड़ गई हैं। और इन रिश्तों में हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं ओनरशिप हमें खुद देनी पड़ेगी, चाहे वो रिश्ता किसी दूसरी आत्मा के साथ है लेकिन वो मुझसे होकर गुजरता है, इसीलिए दायित्व मेरा हो जाता है कि उस रिश्ते को मैं क्या मोड़ दे रही हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को थोड़ा और छानते हैं, खंगालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
सिस्टर शिवानी, उस रिश्ते को हम देख रहे हैं अब, चूँकि कहा जाए कि नींव है, हर घर की नींव होती है या समाज की नींव भी मानी जाती है, एक गृहस्थ जीवन, एक पति पत्नी का जीवन, और वही आज कहीं क्वेश्चन मार्क पर है। आज तो वक्त ये आ गया है कि लोग कहने लग गए हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज ऑब्सोलीट, इट शुड बी फिनिश्ड, लेकिन अभी भी धुरी वही है, पहली सीढ़ी उसे ही माना जाता है। इवन सक्सेस का भी या सफलता की भी बात करते हैं, उसे हमने कई रूपों में देखा, कई तरह से देखा कि किस तरह से रिस्पेक्ट को हम अलग तरीके परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। और हमने पिछली बार बात की थी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन को एक बार थोड़ा सा और हम छूना चाहेंगे, क्योंकि हमने पिछले कड़ी में उसको काफ़ी उस पर बात की थी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जहां हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें हर बार शायद हम अपनी आवाज़ को ही सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। वॉट इज़ एग्जैक्टली मेंट बाय इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन?
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ दूसरे की बात को सुनना इस भाव से कि दूसरा भी सही कह रहा है,
अपने परिपेक्ष में।
अपना थिंकिंग पहले बिल्कुल रेडी कीजिए, अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए फॉर दैट कम्युनिकेशन, और फिर उसी पर्सपेक्टिव से सुनिए कि वो अपने पर्सपेक्टिव से राइट कह रहे हैं, तो उस भाव से उस बात को पूरा सुनना। और कभी भी कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं ना ब्रेकडाउन, वो कभी नहीं होना चाहिए। घरों में कई बार होता है, आर्ग्यूमेंट हो गई, डिस्कशन हो गई, झगड़ा भी हो गया शायद, फिर उसके बाद बोलचाल बंद हो जाती है। अब किसी के घर में कुछ घंटों तक बंद रहती है, लेकिन कई परिवारों में ऐसा पाया जाता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, कि कई दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती है, मतलब बिल्कुल बोलचाल नहीं है। एंड इसमें क्या हो रहा है कि ईच इज़ वेटिंग कि दूसरा आकर पहले बात करेगा, क्योंकि दोनों यही सोचते हैं कि दूसरे की गलती है, तो जिसकी गलती थी उसी को तो आकर बात करनी चाहिए, तो दोनों वेट करते रहते हैं। एंड इस प्रोसेस में कई दिन, कई बार एक एक महीना, तो जैसे ही बात हुई, डिस्कशन हुई, भले बड़ा से बड़ा आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन इट्स फाइन, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू, वी हैव टू, हियर इट इज अ हैव टू, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, हैव टू,
एंड वी वॉन्ट टू ऑल्सो,
या even if, I mean, that's what I'm saying, even if you don't want to, लेकिन अगर आपके परिवार के लिए वो ही हेल्दी है, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन होता है ये हमारे आपस के रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट करता है और बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि इतने दिन तक बात नहीं करना ये बहुत अनहेल्दी,
वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, बहुत स्ट्रेनुअस भी हो जाता है, पूरा माहौल इतना स्ट्रेनुअस रहता है कि आप भागते हैं।
और इसमें कई बार ये भी हो जाता है कि पहले कौन बात करेगा, और इस प्रोसेस में एक्चुअली इतने दिन गुजर जाते हैं। तो आई थिंक इन दिस ब्यूटिफुल क्लोज रिलेशनशिप हमें वेट नहीं करना चाहिए कि दूसरा बात करे, मेरी गलती थी या सामने वाले की गलती थी, हाउ डज इट मैटर, दिस इज़ नॉट ऑफिस। इवन ऑफिस में अभी हमें इस तरह की चीज़ों पर नहीं वेट करना चाहिए, लेकिन ये तो परिवार है हमारा।
और जितनी हम देर करते जाएंगे उतनी रिजेंटमेंट बढ़ती जाती है, उतनी और कहानी अपने अंदर हम कुछ ना कुछ
करते, और उतनी नेगेटिव एनर्जी हम एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं। हार्मनी इन रिलेशनशिप हम कहते हैं, हार्मनी, यू नो, इसको हम लोग बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि मैंने हार मानी, कोई बात नहीं, हार मानी, जहाँ एक ने हार मानी तो रिलेशनशिप्स में वो हार्मनी हो जाएगी, नहीं तो।
लेकिन अगेन, हार मानना यहीं से पड़ेगा। ये एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, एक बार अगर टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता, अगर गांठ पड़ जाए तो वो गांठ ही पड़ती है। लेकिन हर बार हम ये कहते हैं कि रॉन्ग बिलीफ पे हम अपना जो है थॉट क्रिएट करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू बिलीव इन दैट?
जस्ट वन थॉट अवे आपका वो धागा खुलना, जस्ट वन थॉट अवे। इनफैक्ट हमें किसी का फ़ोन भी आया और उन्होंने यही एपिसोड्स देखकर और कहा कि हमारी तो इतने साल से रिश्ता ख़राब है, यू नो, बिल्कुल ही हम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल अब वापस आना? वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि कितना इजी है वापस वो नज़दीकी लाना, क्योंकि वो हमें दूसरे को नहीं परिवर्तन करना ना. तो वन थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे, बट यू हैव टू डू इट एंड सी इट. इस पर अगर हम सोचते रहेंगे कि कैसे नहीं हो सकता, इतनी बिटरनेस थी, इतनी दूरियां थी, कैसे हो सकता है, नहीं, वन थॉट एंड इट्स डन. एब्सोल्युटली
अगेन वही एक थॉट, एक माइंडसेट का शिफ्ट जो है.
अभी तक हम उनको गलत समझ रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को गलत समझ रहे हैं, बस वो गलत को सही आप जब कर लेंगे और इंटरनली कन्विंस होकर ऊपर से बोलने के लिए नहीं कि नहीं वो अपने दृष्टिकोण से सही थे, आपका धागा बिल्कुल सुलझ जाएगा, वो गांठ खत्म हो जाएगी. क्योंकि जब आपको लगा ये सही थे तो फिर आपके अगेंस्ट कोई, मेरे अंदर मन में कोई हैवीनेस नहीं आ सकती है. And everything is sorted out.
That's beautiful. But आप समझ लेंगे, सामने वाला समझेगा या नहीं?
No, only one person needs to do it first. अगर हम वेट करते रहेंगे कि दूसरा भी कब करे, चलो मैं तो कर लूँ, लेकिन वो तो नहीं करेंगे. एक ने ही करना है, दूसरा तो वैसे ही रेडी बैठा है. एक्चुअली दोनों रेडी बैठे होते हैं, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स अ गुड रिलेशनशिप, लेकिन वो ये कौन पहले करे. और हर एक ये सोच रहा है कि मैं करूँ तो पता नहीं वो रेडी हो या नहीं. तो एक जना करके देखो, आप करें, दूसरा रेडी बैठा, जस्ट वेटिंग टू कम फॉरवर्ड, जस्ट मूव योर हैंड फॉरवर्ड एंड आपको वो दूसरा हाथ वहाँ से आता हुआ दिखाई देगा. बिल्कुल
शिवानी, आज के इस दौर की जो बात हम कर रहे हैं कि जब घर से बाहर हम ज़्यादा वक्त गुजार रहे होते हैं या कहीं ना कहीं वहाँ बाहर रिलेशनशिप ज़्यादा आसान लग जाता है क्योंकि वहाँ इतना बोझिल हो चुका होता है, तो ये सबसे ज़्यादा देखा गया है, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दिया जा रहा है. समाज के हर एस्पेक्ट में हमें वो नज़र आ रहा है. एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना ज़्यादा है, ये क्यों इतना सहज हो गया है, हमने सारे आदर्श सारी मान्यताएँ क्यों ताक पर रख दी. और दूसरी बात ये कि वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसे कभी भी मैरिज में कन्वर्ट करने वाली बात नहीं आती है. इट हैज़ टू बी रिटेन्ड, मैरिज इज बींग रिटेन्ड. क्यों हम इतने हो गए हैं कि दो चेहरे ओढ़कर ही हम रहना चाहते हैं? क्या हम इतने कहीं डिप्लीटेड हैं?
हाँ, एक तो आत्माएं हम बहुत कमज़ोर हो गई हैं वर्तमान समय. और क्यों हमारा झुकाव दूसरी तरफ बाहर जा रहा है? क्योंकि हमने एक इमेज बनाई है. See, we said every relationship, हम अपनी कॉन्शियसनेस में एक इमेज क्रिएट करते हैं. तो फॉर अ हस्बैंड और फॉर अ वाइफ स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके माइंड में एक इमेज है कि मेरी वाइफ इस तरह से होनी चाहिए और द अदर वे अराउंड. अब व्यक्ति कोई और उसमें होंगे, प्लस एंड माइनस. तो कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट तो कर लेते हैं एंड आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, चल रही है ठीक से, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी उनको चेंज करके अपने इमेज की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा उतना ज़्यादा रेडी नहीं है चेंज होने के लिए. अब कहीं ना कहीं चलते हुए अगर आपको कोई मिल जाता है जो आपकी इमेज के साथ ज्यादा मैच करता है,
पूरा वो भी नहीं करेगा,
पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कोई एक मिल जाए ऐसे व्यक्ति बाहर जो आपकी इमेज से मैच करता है, तो देन यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, यू नो, बिकॉज अच्छा ये था मेरे माइंड में एक्चुअली, दिस इज हाउ माई वाइफ शुड बी और दिस इज हाउ माई हस्बैंड शुड बी. एंड तब थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है. हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस की जो इमेज है उसके साथ वो हो रहा है. हम ज़्यादातर चाहते हैं कि हमें ये सारा रिलेशनशिप हो भी रहा है क्यों कॉम्प्लिकेटेड, हम लोगों से खुशी चाहते हैं, हम लोगों से प्यार चाहते हैं. हमने पहले ही देखा कि आत्माएँ सारी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं. सबसे पहले ये बिलीफ सिस्टम चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें किसी और से खुशी मिलती है या खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है. नाउ द हस्बैंड वांट्स हैप्पीनेस फ्रॉम द वाइफ, ही डजंट रियलाइज कि हैप्पीनेस इज माय ओन क्रिएशन, आई कैन क्रिएट इट. अब अगर वाइफ से नहीं मिली वो हैप्पीनेस, इट मीन्स स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी और से मिलने से शायद वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट कर पा रहे हैं. और उनका बिलीफ ये बन रहा है कि मुझे इनसे खुशी मिल रही है, मिल उनसे भी नहीं रही है, ये सिर्फ ये है कि मैं उस व्यक्ति से मिलने से अपने अंदर वो खुशी क्रिएट कर पा रहा हूँ. बट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग इट एंड आई कुड हैव क्रिएटेड इट इवन हियर, but I'm creating it there, and then I start thinking that I'm getting it from that person. And तब हम कहते हैं जो मुझे आपसे नहीं मिला
वो वहां से मिल रहा
है.
मिला एक्चुअली अपने आप से ही.
मिला अपने आप से,
क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सैटिस्फाइड हो गया कि मेरी इमेज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो मुझे मिल गया.
तो मिला अपने आप से है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है. मैं अगर इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहूँ तो मैं इसमें रहकर भी उसको क्रिएट कर सकता हूँ. बट अगेन देन आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ माई मैकेनिज्म वर्क्स. बेसिकली वॉट इज हैपनिंग, एक तो आपका रिलेशनशिप चूज करके हुआ, इट्स आउट ऑफ चॉइस, एंड सम रिलेशनशिप्स विच आर नॉट विद चॉइस. अब ये जो मैरिज का रिलेशनशिप है ये तो ऑलरेडी बन चुका है ना, उसके बाद आगे परिवार भी है, तो ये रिलेशनशिप को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. लेकिन कहीं ना कहीं यू गॉट अ चॉइस टू ऑल्सो स्पेंड मोर टाइम विद समबडी एल्स, तो आपने वो भी करना शुरू कर दिया. एंड इट स्टार्ट्स विद जस्ट यू नो यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद अनदर पर्सन. क्यों? क्योंकि शायद आप अपनी वो वाली, अगेन दिस इज कमिंग बिकॉज घर पे लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है. अगर मैं आपसे अपनी कोई बात शेयर करना चाहता हूँ लेकिन पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे कोई और चाहिए जिससे मैं वो शेयर करूँ. सोचते हैं कि मुझे कोई और चाहिए, तो फिर हम किसी और से शेयर करना शुरू कर देते हैं. अब दूसरे को तो डजंट हैव टू स्पेंड द लाइफ विद मी, तो वो हमें एक्सेप्ट करता रहता है, करता जाता है, करता जाता है. और जो हमें एक्सेप्ट करेगा ये नॉर्मल है, आत्मा का संस्कार, कि जो हमें एक्सेप्ट करेगा हम उसकी तरफ ड्रॉन होते हुए चले जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई वी फील एक्सेप्टेंस इज द फंडामेंटल ऑफ एवरी रिलेशनशिप. अगर आप घर के अंदर, इवन जो आपने कहा था ना पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चे फ्रेंड्स की तरफ क्यों चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है, पेरेंट्स से नहीं मिलता है. अगर पेरेंट्स से मिले फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो बॉन्डिंग होगी ये कभी नहीं टूटेगी. सेम विद द हस्बैंड वाइफ, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, किसी और से वो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, अपने आप झुकाव हो जाएगा. फिर आप अपनी हर बात वहाँ शेयर करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहाँ होगा. और जहाँ वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुआ तो घर वाला जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा कमज़ोर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा. बट इसमें भी बहुत ईजी है ऑपोजिट पर्सन के लिए. अगर आप चाहें तो आप अपने रिलेशनशिप को फिर से जोड़ सकते हैं. डू नॉट गिव अप, क्योंकि ये जो जुड़ता है बाहर रिलेशनशिप, ये बहुत एक मोमेंट्री रिलेशनशिप है. ये सिर्फ इसको एक, ये फ्रेंडशिप है, ये एक फ्रेंडशिप है एंड इट्स फाइन. ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको हम वो राइट फाउंडेशन पे ले आएंगे तो वो एक फ्रेंडशिप ही रहेगी. फ्रेंडशिप इज फाइन, दिस विल ऑल गेट बेटर. हम ज़्यादातर डिस्टर्ब इस चीज़ से हो जाते हैं कि हम उस रिश्ते को कैसे तोड़ें. हम ये नहीं समझते हम इस रिश्ते को कैसे जोड़ें,
जो ये पुराना रिश्ता था, जो रिश्ता था ऑलरेडी, जो एक्चुअल में रिश्ता है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा उसको जिया होता है और एक पूरा परिवार खड़ा किया है. सो दैट इज माई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक्चुअली.
राइट, बट व्हेन वी कम टू नो कि ईदर माई हस्बैंड और वाइफ इज हैविंग अ रिलेशनशिप आउटसाइड, माई एनर्जी, फर्स्ट आई हेट द पर्सन, सेकेंड आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, यू नो, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, तो आप एक क्रिमिनल हैं, आपने ये गलत किया. तीसरा पूरा थिंकिंग ये होगा कि वो रिश्ते को कैसे तोड़ा जाए. क्योंकि हमने ये सोचा कि वो रिश्ता टूटेगा
तभी ये जुड़ेगा,
तब ये घर आ जाएंगे वापस, मतलब द पर्सन विल बी ड्रॉन बैक
टुवर्ड्स. कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा.
दैट्स नॉट द ट्रुथ. वो भले रिश्ता टूट जाए, आप कुछ भी करके तोड़ भी दें उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जुड़ गया जो टूटा हुआ है. क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ क्रैक है, तब तो कहीं और जुड़ा. तो नेवर फोकस योर एनर्जी ऑन द डिस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ इट. हमारी सारी एनर्जी डिस्ट्रक्शन पार्ट पर होती है, उसको कैसे तोड़ा जाए. इट शुड ओनली फोकस ऑन जो है फाइन, इसको कैसे जोड़ा जाए. वील हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमें हमेशा लगता है कि उनकी गलती थी इसीलिए दे आर हैविंग दिस रिलेशनशिप, आई हैव टू रिमेंबर दैट इफ माई हस्बैंड और वाइफ goes into a relationship, problem is here. क्यों गया व्यक्ति घर की तरफ छोड़कर दूसरी तरफ क्यों जाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ वो बॉन्डिंग नहीं थी ना. बॉन्ड एक ही जगह जुड़ेगा. अगर यहाँ जुड़ा हुआ होता ठीक से फिर तो दूसरी तरफ ना जाता. तो ये बॉन्डिंग को क्यों ना स्ट्रॉन्ग कर ले. अगर कुछ हुआ है, द पर्सन हैज गॉन एंड हैड अनदर फ्रेंडशिप आउटसाइड, नो प्रॉब्लम. हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए दे फाउंड द नीड टू टॉक टू समबडी एल्स. कैन आई हील दिस बैक? एंड नाउ व्हाट इज नीडेड इज इंस्टेड ऑफ नफरत देना, इतनी यू नो अपसेट होकर वो नेगेटिव एनर्जी थ्रो करना, आपको बिल्कुल ऑपोजिट देना पड़ेगा, क्योंकि आप वो बॉन्ड को इफ यू वॉन्टेड टू वर्क अगेन. इसमें आपके पास दो चॉइस है, या तो आप जो रिश्ता थोड़ा सा बना हुआ है उसको पूरी तरह से तोड़ दें, बट अगर जोड़ना चाहें तो ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन अंदर से बहुत क्लीन ये थॉट चाहिए, एकदम क्लीन विदाउट एनी बिटरनेस, कि इट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग, नाउ आई विल क्रिएट इट. मैं शायद उतना वो रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं दे पाई, तो अब वो एनर्जी देना. लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम उस टाइम इतनी नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर कि वो रिलेशनशिप और दूर हो जाता है. तो हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा, एक चीज़ कमज़ोर है, एक कड़ी कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको और ही क्यों खींच रहे हैं? उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो उसको डालो. Anyone tries this, it will work.
लेकिन वो व्यक्ति जो किसी और रिलेशनशिप में है, वो वापस कैसे आएगा? क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है वहाँ.
मेरा थॉट ही ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसे टूटेगा. सी, अपनी एनर्जी को हम एक ही जगह लगा सकते हैं. अगर हम अपनी एनर्जी को इस एंगल पर लगाएं कि वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो वापस कैसे आएंगे, मुझे क्या देना है, आप देते जाइए देते जाइए, वो खिंचकर वापस आ जाएंगे. क्योंकि इट्स अ लॉ कि जहाँ वो पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ वो प्यार जाएगा, वो आत्मा वापस खिंची हुई आ जाएगी. इट इज डेफिनेट, लेकिन इट हैज़ टू बी वेरी क्लीन एंड वेरी प्योर एंड वेरी पॉजिटिव. ये जो विच इज़ लिटिल प्रैक्टिस, ये चाहिए डेफिनेटली, कि आप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहिए, कि आपके अंदर बिल्कुल बिटरनेस नहीं हो, आपके अंदर ये थॉट नहीं हो कि पाप कर दिया है, यू नो ऐसा कुछ कर दिया है, आपकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे. रिस्पेक्ट थी कि आई थिंक आई लाइक दिस पर्सन एज द पर्सन इज, वो इंटैक्ट रहे. गिव सो मच लव, जस्ट वेट एंड सी, मैजिक विल हैपन. नॉर्मली बहुत लोग वापस घर की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी श्योर कि उनको घर पे वो वायुमंडल वैसा मिलेगा, परिवार से वो एक्सेप्टेंस मिलेगी. क्योंकि नॉर्मली घर में सारे लोग उनकी तरफ इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जैसे कि पता नहीं क्या करके आए हैं. तो वो दृष्टिकोण इतनी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ फेंकता है कि वो उस घर से पास आने की बजाय और दूर हो जाते हैं. तो घर का वातावरण इतना वेलकमिंग हो कि कुछ भी नहीं हुआ है, यू आर फैमिली एंड वी आर फैमिली एंड एवरीथिंग इज फाइन, दैट पर्सन विल वांट टू कम बैक होम डेफिनेटली. दैट्स द
मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, यू नो, टू एक्सेप्ट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इवन इफ यू एक्सेप्ट
वन थॉट अवे टू एक्सेप्ट, कुछ नहीं है,
इट विल हैपन अगेन, यू नो, दीस आर क्वेश्चंस.
आई वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, मुझे आई वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क एंड आई विल एक्सेप्ट. जैसे हम सारा दिन में छोटी मोटी बहुत सारी गलतियां करते हैं, एक गलती और हो गई थी, दैट्स ऑल. बट आई वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, आई विल बी वेटिंग, एब्सोल्युटली. एंड उसके बाद जब वो व्यक्ति वापस घर की तरफ आ जाते हैं, बी इट, इट शुड बी वेरी पॉजिटिव. ये नहीं, यू नो, कई बार हमने देखा कि द वाइफ फॉरगिव्स द हस्बैंड, लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि यू नो, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है आपके ऊपर, आपको फॉरगिव करके. नो, एंड देन शी कीप ऑन रबिंग इट इन, यू नो, आप बार बार रब इन करेंगे कि नहीं, आपको, आपने ये किया था, आपने ये किया
था, फॉरगेट तो नहीं हुआ.
हाँ, तो बार बार याद दिलाने की कोशिश करेगी कि मैं क्यों ट्रस्ट करूँ, मैं क्यों ट्रस्ट करूँ, आपने तो. सो दैट इज डैमेजिंग. आप जोड़ रहे हैं एक रिश्ते को, एक्चुअली उस इंसिडेंट को उसके बाद थॉट में भी आना नहीं चाहिए.
बिकॉज लेकिन वो विक्टिम बनने का जो हमारा
वो हम अपना काम निकलवाने के लिए करते हैं. इफ आई वॉन्ट टू गेट यू नो थिंग्स माई वे, तो मुझे दूसरे को नीचे गिराना पड़ता है ना, तब तो मेरी सुप्रीमेसी हो जाती है उसके ऊपर. तो जैसे ही दूसरे की गलती दिखाकर दूसरे को नीचे किया, तो मेरी बात मानी जाती है. तो आई यूज इट एज अ वेपन, व्हिच इज वेरी हार्मफुल.
And in fact, it's much more important not to remember, but it's the most difficult part. But again, when you said about healing, यू नो मेडिटेशन इज़ द ओनली प्रोसेस वी नो विच एक्चुअली कैन हील, बिकॉज आई थिंक समवेयर द पर्सन हु हैज़ बीन वेटिंग नीड्स टू हील मोर.
एब्सोल्युटली.
यू नो शी हैज़ टू बी और ही हूएवर नीड्स टू बी मच मच मोर स्ट्रॉन्गर देमसेल्व्स.
मैं तो उन्हें ये जब रियलाइज हो जाएगा ना कि इट्स ओके, इट्स अगेन अ कार्मिक अकाउंट विच पुल्ड, एक कार्मिक अकाउंट ही था जो अपनी तरफ खींच के ले गया, वापस आ गए हैं. और जितना हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपनी शक्तियों को फिर से बढ़ाएंगे, तो जो चीज़ लगती बहुत मुश्किल है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है. हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ये साउंड कर रही होंगी शायद कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, और ये एक्चुअली डिस्कस करने जैसी भी बात नहीं है, इसको बस कर दीजिए. दे आर सो सिंपल वेन यू स्टार्ट डूइंग इट. करना बहुत मुश्किल नहीं होता, यहाँ स्वीकार कर लेना सिर्फ मुश्किल होता है.
सिस्टर शिवानी, बात वही आती है कि जब कोई भी बाहर से किसी रिश्ते से लौटता है तो क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं उसे स्वीकारने को?
डू वी हैव अ चॉइस? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ दैट. दैट्स व्हाट. मुझे अपने आप के साथ कैसे फील करना है और मैं इस रिलेशनशिप को या इस रिलेशनशिप में कितना और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, दैट पर्सनल डिसीशन आई विल टेक. Forgiving or not forgiving is not something very big I'm doing. बात सिर्फ ये है कि if I say I'm forgiving, तो सबसे पहले मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपकी की हुई किसी बात को जो मुझे तकलीफ देती है अगर मैं उसको होल्ड बैक करके रखती हूँ तो मेरा वो मनन उस पर चलता रहता है, तो वो मुझे तकलीफ देती है. और अगर मैं उसको लेट गो कर सकती हूँ कि ठीक है मेरे लिए ये एपिसोड एक था जो कि फिनिश हो गया, नाउ आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, इट्स ओवर, तो मैं अपने आप को हल्का कर सकती हूँ. तो इट्स मोर अबाउट मैं अपने आप को कितना पेन देना चाहती हूँ. सो इट्स फॉरगिविंग बेसिकली. वेन एवर वी फॉरगिव समबडी एल्स फॉर द बिगेस्ट थिंग दैट दे हैव डन, इट्स फॉरगिविंग माई सेल्फ. बिकॉज वेन आई से आई फॉरगिवन यू मीन्स आई हैव जस्ट टेकन इट आउट फ्रॉम हियर. एंड थोड़ी देर रोज अपने आप को एम्पावर करने के लिए समय निकालें, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें कि जो व्यक्ति वापस घर आया है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ कर सकेगा उसमें, क्योंकि वो खुद बहुत दर्द से गुजर रहा है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ, क्योंकि यहाँ गिल्ट है, फिर यहाँ लग रहा है कि सब लोग सोच रहे होंगे मैं गलत करके आया हूँ, फिर एक जो बाहर एक अटैचमेंट हो गई थी तो अटैचमेंट से किनारा करके आए हैं
तो वहाँ का
वो दर्द है, फिर उस रिश्ते को ठुकरा दिया वो गिल्ट है. सो मेनी थिंग्स एंड प्लस अपने अंदर कॉन्शियसनेस कि राइट किया या रॉन्ग किया, किसके साथ राइट किया. इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट पर्सन. अब उसको क्या चाहिए? सो मच हीलिंग पावर. उससे उस हालत में हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये कुछ तो करें, इतनी गलती करके वापस घर आए, ये इस रिश्ते को जोड़े. नहीं, वो उस हालत में नहीं है, वो बिल्कुल जैसे डिस्चार्ज टोटली गिरे हुए हैं यहाँ पे मेंटली. सो मच हीलिंग इज नीडेड. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. यस वी आर इन लॉट ऑफ पेन, बट द पर्सन हु हैज कम बैक इज इन मच 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 मोर पेन, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज्यादा और फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं. तो ही नीड्स लॉट, ही और शी needs lot of love and healing. तो उसके लिए हमें खुद को empower करना पड़ेगा.
Meditation,
meditation उसमें बहुत मदद करेगी.
Meditation की technique एक बार फिर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा एक और सवाल कि जब हम इस बाहर कहीं pull है, attraction है, जैसे कि आपने अभी कहा कि उस रिश्ते में भी जब हम जा रहे होते हैं, जैसे आप वापस लौटे हैं तब भी guilt है, जब जा रहे होते हैं, जब वो pull है, तब भी तो कहीं ना कहीं हमें मालूम होता है
गिल्ट है,
कुछ गलत कर रहे हैं. एब्सोल्युटली,
एब्सोल्युटली पता है कि हम गलत करने जा रहे हैं. लेकिन वही है ना, जैसे जब कोई कुछ भी हम काम करने जाते हैं हमें अंदर एक आवाज़ तो आती है. आवाज़ भी मतलब क्या, मन में दो प्रकार के थॉट्स चलते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे डिसाइड करके यू डोंट गो इन टू अ रिलेशनशिप. वो शुरू कैसे होगी? धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे ज़्यादा कुछ शेयर करना, फिर और ज़्यादा बहुत सारी बातें शेयर करना. दैट्स हाउ अ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. यू डोंट गो एंड हैव अ बॉन्डिंग लाइक दिस. दैट्स नॉट अ बॉन्डिंग, दिस वी आर टॉकिंग ऑफ अ बॉन्डिंग. तो वो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है. तो शायद हमने इंटेलेक्ट को बहुत ज़्यादा उस दौरान यूज़ नहीं किया, और इंटेलेक्ट अगर कहीं ना कहीं जजमेंट दे भी रही थी कि ये रॉन्ग है, लेकिन हमें वो चीज़ अच्छी लग रही. और सोल कॉन्शियसनेस जब हमें समझ में आता, तो रिलेशनशिप्स हैं क्या? आत्मा का आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज. वी विल नॉट हैव टू यू नो देन कंपार्टमेंटलाइज इट कि दिस रिलेशनशिप एंड दैट रिलेशनशिप. इट्स अ सोल टू सोल एक्सचेंज एंड प्योरिटी. मैं आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्योरिटी है, तो वो प्योरिटी इतनी इमर्ज होती जाएगी कि इम्प्योरिटी का ट्रेस भी थोड़ा सा फर्निश हो जाएगा. लेकिन रोज की अपनी चेकिंग, सवेरे इंट्रोस्पेक्शन, टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड टॉकिंग टू गॉड डेफिनेटली. एंड रात को सोने से पहले अगर आप अपनी दिनचर्या को चेक करें, तो आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म हो जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, ये हो नहीं सकता. क्योंकि रोज की चेकिंग हो रही है ना, पछताते तो हैं हम बहुत समय बाद कि ये मेरे साथ क्यों हो गया.
क्योंकि वो निकल चुका होता है,
यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप, दे नो यू नो इट्स गॉन रॉन्ग एंड देन दे विल से बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप.
हियर आई वांट टू आस्क यू बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग, देयर माइट बी मेनी पीपल हु आर स्टिल इन्वॉल्वड, दे वांट टू कम बैक. व्हाट टू डू, हाउ टू गेट आउट,
वन थॉट अवे अगेन. If they want to come back, अगर वो mentally बिल्कुल ready है to come back, मतलब क्या, एक attachment है जिससे अपने आप को किनारा करना पड़ेगा और वापस जो अपनी जिम्मेवारियां हैं, जो संबंधियां हैं, उनकी तरफ वापस आना होगा.
और उनका क्या जिसके साथ अपने संबंध जोड़ा था?
Again, you will have to talk and discuss it out. But it is in the long run beneficial even for the opposite person, ना? तो आप कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन it is all because ये रिश्ते का भी तो कोई फ्यूचर नहीं है. बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं है. तो जब ऑलरेडी पता है कि जिस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, जिसमें अभी शायद लग रहा है कि बहुत अच्छा है लेकिन आगे जाकर दर्द ही दर्द है, तो उसको और ज़्यादा बढ़ाने का कहाँ तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो उसको अगर आप अभी भी रियलाइज कर लेते हैं, टॉक इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट बिकॉज इट्स पॉसिबल, एंड आप खुद बहुत हल्के हो जाएंगे उसके बाद. वो व्यक्ति भी बहुत हल्के, मे बी अ लिटिल पेन, यस, हो सकता है कि थोड़ा समय एक पीरियड बीच में आएगा जो बहुत यू नो दर्द वाला होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो फिर भी बेनिफिशियल होगा. इवन फ्रॉम दैट पर्सन फ्रॉम होम यू हैव टू ब्रेक अवे, इवन फॉर दैट पर्सन इट इज बेनिफिशियल.
सचिन शिवानी, आज वो पर्सपेक्टिव हमने लिया जिससे कहीं ना कहीं पूरी नींव समाज की हिली हुई है. और इतनी आसानी से एक थॉट, हर बार आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक संकल्प है जो वापस ला सकता है उस नींव को, उतना ही पुख्ता कर सकता है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
ओम शांति.
इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा. रिश्तों को कुछ नए पैमानों पर देखेंगे, एक नए अंदाज में देखने की कोशिश हम करते रहेंगे. मुलाकात होगी अगली कड़ी में. दीजिए इजाज़त. ओम शांति.